आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोट चोरी के आरोप से आए राजनीतिक तूफान की रफ्तार लगातार बढ़ती दिख रही है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी 16 दिवसीय बिहार यात्रा की शुरुआत इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ रविवार को सासाराम में एक साझा रैली से की, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग और भाजपा पर वोट चोरी का सीधा आरोप लगाते हुए चेतावनी दी।
पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है, अब ये बात छुपी नहीं है और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे।
राष्ट्रीय जनता दल से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग और भाजपा पर तीखा प्रहार किया।
आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है बल्कि डकैती डाली जा रही है। बिहार लोकतंत्र की जननी है, भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले, लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे।
चुनाव आयोग ने रविवार को वोट चोरी के आरोपों पर अपनी पहली प्रेस वार्ता की, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने विपक्षी दलों को चुनाव आयोग के कंधे का इस्तेमाल कर मतदाताओं को निशाना बनाने पर आगाह किया।
कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख कर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा।
उन्होंने बिना नाम लिए श्री गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें या तो अपने आरोपों के लिए माफी मांगनी होगी या शपथ पत्र देना होगा।
सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने दो बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं।
लगभग सभी विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता को गंभीर आरोपों से बचने की एक विफल कोशिश बताया है। स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव, जो सर्वोच्च न्यायालय में SIR के खिलाफ याचिकाकर्ता भी हैं, ने चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता को शर्मनाक करार दिया।
चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, किसी सवाल का जवाब नहीं देता। सवाल है कि अगर राहुल गांधी से आप एफिडेविट मांगते हैं तो अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं? सवाल है कि आप क्या बेंगलोर में जो कुछ प्रमाण आए हैं उसकी जांच करेंगे? सवाल है कि इससे पहले जिन लोगों ने हलफनामा दिया था उनको उत्तर क्यों नहीं मिला? सवाल है कि इसका मतलब है कि देश में 2024 में जो वोटर सूची थी वो डिफेक्टिव थी, फ्रॉड हुआ था क्या वोटर देश में? सवाल है कि बिहार में कितने लोगों ने बगैर डॉक्यूमेंट के अपने एन्यूमरेशन फॉर्म दिए, कितने लोगों के फॉर्म पे नॉट रिकमेंडेड लिखा गया? आखिर बिहार में कटे तो वोट लेकिन बढ़े कितने और क्यों नहीं बढ़े? किसी सवाल का जवाब नहीं, बार बार याद दिलाने पे जवाब नहीं, और जवाब के बदले लफाजी, जवाब के बदले धमकी की भाषा।
चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने श्री गुप्ता के दावे को खारिज करते हुए कई शपथ पत्रों की डिजिटल रसीद एक्स पर संलग्न करते हुए उन्हें चुनौती दी। उन्होंने कहा, हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि ये जो डिजिटल रसीद हमको भेजी गई है वो सही है, नहीं तो चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता न तो विपक्ष की रैली और न ही चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता पर कोई टिप्पणी करता नजर आया। भाजपा ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का नाम उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए तय किया है। रविवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने उनके नाम पर सहमति दी। श्री राधाकृष्णन 16 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़ गए थे। 1998 और 1999 में वे कोयंबटूर सीट से सांसद बने थे। 2004 से 2007 तक तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने थे। भाजपा के इस कदम को संघ के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले 15 अगस्त के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने संघ को विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बताते हुए उसके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उनके इस कथन पर विपक्षी दलों ने और कई प्रबुद्ध लोगों ने घोर आपत्ति दर्ज करते हुए संघ द्वारा भारत के संविधान और तिरंगे झंडे को वर्षों तक स्वीकार न करने पर सवाल किए हैं। और अब बात मानसून की, जो पहाड़ी राज्यों में कहर बरपा रहा है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ त्रासदी के बाद जहां मरने वालों की संख्या 65 हो गई है, कठुआ में भी 3 जगह बादल फटने से 7 लोगों के जान जाने की खबर है। सेना और पुलिस की मदद से बचाव कार्य जारी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी रविवार तड़के बादल फटने से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में इस मॉनसून से अब तक 261 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश पड़ने से यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। बाढ़ नियंत्रण विभाग ने पूर्वी दिल्ली में यमुना का जलस्तर 50 सेंटीमीटर तक बढ़ने की चेतावनी दी है और यमुना के पास निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।